वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो चूंकि आज भीष्म देव का आविर्भाव है तो आज पूरी चर्चा भीष्म देव के बारे में हम करेंगे। तो बहुत चर्चा है उनके बारे में। सबसे पहले तो प्रभुपाद ने जो चर्चा की है श्रीमद् भागवत में और सूत गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं भीष्म देव के बारे में। शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अध्याय 9 में जो चर्चा हुई है तो उसको पहले हम करके इसके बाद फिर एक पुस्तक भक्ति विकास स्वामी ने लिखी है जय श्री प्रभुपाद, तो इससे भी हम पढ़ेंगे भीष्मदेव की तुलना प्रभुपाद से उन्होंने की है। प्रभुपाद की जो महानता है वो भी भीष्मदेव के समान है, तो कुछ है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो मेरे लेख हैं भगवद गीता पर उनमें भी भीष्म देव की चर्चा है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये अध्याय 9 है प्रथम स्कंद का, जिसमें कि भीष्म जी देह त्याग करते हैं भगवान कृष्ण की उपस्थिति में। जैसे आज तो आदर भाव है भीष्म देव का, लेकिन यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं उनके तिरुभाव की। तो पहली बात यह है कि उनका तिरुभाव तो आता ही नहीं हमारे वैष्णव कैलेंडर में, भीष्म जी का तिरुभाव तो आता ही नहीं है, इसलिए भी हम तिरुभाव की चर्चा भी आज के दिन ही कर सकते हैं और कोई दूसरा अवसर नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि वैष्णवों के आविर्भाव तिरुभाव में कोई अंतर नहीं है, है कि नहीं, इसलिए आविर्भाव के दिन भी उनके तिरुभाव की चर्चा की जा सकती है। क्योंकि उनके तो जो है आविर्भाव तिरुभाव दोनों ही दिव्य होते हैं। तो यहाँ पर दृश्य है कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और युधिष्ठिर महाराज उस स्थान पर गए जहां पर भीषण नरसंहार हुआ था, जहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर सरसैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर क्यों गए भीष्मदेव के पास? क्योंकि वो भयभीत थे कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। इतना भारी जो नरसंहार हुआ है तो युधिष्ठिर अपने को दोषी मान रहे थे, इस कारण से गए हैं। इति भी कहा प्रजा द्रोहा सर्वधर्म विविध ततो विनशनम प्रागान यत्र देव व्रतो पतन। तो इसमें सूत गोस्वामी कहते हैं देवव्रत जहां पर अपतत यानी गिरे, जिस स्थान पर भीष्म जी गिरे, मतलब एक ऐसा बिंदु था जहां की भीष्म जी अपने रथ से गिरे। भीष्म जी जब रथ में थे तो वो रथ तो एक स्थान में नहीं रहता था और बहुत दूर चलता था, आगे पीछे दाएं बाएं चारों दिशाओं में चलता था, लेकिन जब गिरे रथ से तो फिर वहां से हिले नहीं, पूरा महाभारत युद्ध हुआ उसके बाद भी, लेकिन जो भीष्म जी का स्थान था वो नहीं बदला। जब उनके शरीर में पूरे शरीर में बाण भर गए, पूरा शरीर बाणों से भर गया, एक अंगुल भी जगह खाली नहीं रही उनके शरीर में, तब उन्होंने स्वयं अपने शरीर को गिराया और अच्छी तरह से सोच विचार के गिराया कि कहां उनको गिरना है, किस तरफ अपना स्थिर करना है। पूरी तरह से जो ना अपनी चेतना में थे और अपने बस में थे भीष्म जी, तो रथ से जब वो गिरे तो अपनी इच्छा से गिरे और उसी तरह से गिरे जिस तरह से वो चाहते थे, जिस दिशा में सिर करना चाहते थे, जिस दिशा में पैर करना चाहते थे, ऐसे ही गिरे भीष्म जी। तो उसी स्थान पर युधिष्ठिर महाराज गए, इसलिए सर्वधर्म विविधया संपूर्ण धर्मों को जानने की इच्छा से युधिष्ठिर आए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी राजा युधिष्ठिर को भीष्मदेव कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे, भीष्मदेव भी इस मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना करेंगे। तो ये सब भगवान की योजना है। क्या योजना है कि भीष्म जी उपदेश दें युधिष्ठिर महाराज को और साथ साथ भीष्म जी की प्रार्थना भी सुनना चाहते हैं भगवान। व्यक्तिगत रूप से भीष्म जी जो है कृष्ण से जो बात करना चाहते हैं तो भी भगवान की इच्छा है ना, इसलिए भगवान जो है यहां आए हैं। हाँ, और इस प्रकार भौतिक कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं, इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था भीष्मदेव को, जब तक कि वो इच्छा ना करें तब तक नहीं मरेंगे। भगवान राम के राज्य में हर व्यक्ति ऐसा था, राम के राज्य में हर व्यक्ति ऐसा था, लेकिन यहां भीष्म जी एकमात्र ऐसे थे कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। और आप जानते हैं कि वरदान किसने दिया था उनको, उनके पिता शांतनु ने दिया था, है ना। और शांतनु जो उनके पिता थे उन्होंने क्यों दिया था, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न हुए भीष्म देव के त्याग से, बहुत बड़ा त्याग भीष्म देव का। देखो वे जवान थे और उनके पिता जवान थे या जवानी को पार कर गए जो भी हो, है ना, तो ये विवाहित नहीं थे और जवान थे, विवाह के योग्य थे और राज्य के योग्य थे, लेकिन अपने पिता की प्रसन्नता के लिए इन्होंने जीवन भर राज्य नहीं करने का भी व्रत ले लिया और जीवन भर विवाह नहीं करने का भी व्रत ले लिया। तो देवव्रत इनका नाम था, वैसे इनका नाम था वास्तव में देवव्रत, लेकिन फिर देवताओं ने इनको भीष्म नाम दिया। और इनकी जो प्रतिज्ञा है वो प्रसिद्ध हुई भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से। भीष्म का मतलब क्या है, भयानक। तो भीष्म जी जो बहुत भयानक व्यक्ति हैं इस मामले में, इनकी प्रतिज्ञा भी बड़ी भयानक है। तो यहां लिखा है, रूपा लिखते हैं, और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह सरसैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतः सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए एकत्र हुए। और समय युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ आए भीष्म के निकट, तो कैसे आए, स्वर्ण आभूषणों से आभूषित ऊंचे प्रकार के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर बैठ करके आए, और व्यास धौम्य जैसे जो पुरोहित हैं वो भी उनके साथ थे। तदाते भ्रातर सर्वे सदस्व स्वर्ण भूषित अन्न गच्छन्न थैर वेप्ता व्यास धौम्या दयस्तथा। भीष्मदेव कैसे मालूम पड़ते हैं, आकाश से गिरे हुए देवता के समान, इतना तेज था उनके शरीर में, स्वर्ग के जो देवता है उनके शरीर में तेज होता है ना, उनके जो है शरीर में पसीना नहीं आता है और भूख प्यास का कष्ट नहीं होता है, उनके शरीर की छाया नहीं बनती जमीन में और जमीन को छूते भी नहीं है। देवता जब आते हैं पृथ्वी पर तो उनके पैर जमीन पर नहीं रहते, जमीन से थोड़ा ऊपर रहते हैं उनके पैर। तो भीष्म जी भी आकाश से गिरे हुए देवता के समान, क्योंकि आकाश से देवता आते हैं तो खड़े रहते हैं, गिरते तो नहीं है। यहां भीष्म जी गिरे हुए हैं तो अंतर केवल यही है कि ये गिरे हुए देवता के समान है, खड़े नहीं है ना, गिरे हुए हैं लेकिन हैं देवता के समान। एक कारण तो यह है, देवता के समान क्यों है, जमीन को नहीं छू रहे हैं, जमीन को नहीं छू रहे हैं, है ना। जो बाण की नोक है, बाण सामने से आ पार हुए तो पीछे की तरफ बाण की नोक निकली है, तो बाण की नोक के ऊपर जो है ना वो लेटे हुए हैं, बाण की नोक जो है जमीन को छू रही है। बहुत पतला बिंदु होता है बाण का जो शरीर को आर पार करता है, तो वो बाण के जो तीखी नोके हैं उनसे ही जमीन को छू रहे हैं, बाकी जमीन को नहीं छू रहे हैं, इसलिए देवता के समान मालूम पड़ रहे हैं। और शरीर से भी जो तेज निकलना है ना, वो भी ऐसा नहीं है कि जब किसी के शरीर में खून निकलता है तो बहुत बुरा उसका रूप दिखाई पड़ता है, बहुत विकृत हो जाता है, लेकिन नहीं, वे जो है देवता के समान तेजस्वी लेटे हुए हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं। तो उन्हें देख करके पांडव युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और छोटे भाइयों और भगवान कृष्ण ने भी उन्हें प्रणाम किया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान मनुष्य की तरह आचरण करते थे, अतः उन्होंने भी मरणासन्न भीष्म देव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। युधिष्ठिर के पीछे पीछे भगवान कृष्ण भी भीष्म को प्रणाम करते हैं। और भीष्म देव को देखने के लिए कौन आए, ब्रह्मांड के जितने देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, वे सब एकत्र हुए भीष्म देव को देखने के लिए। ब्रह्मांड भर से देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि वहां एकत्र हुए, क्योंकि भीष्म जी का नाम जो है उस लिस्ट में है, ब्रह्मांड भर के जो है जो 12 महाभागवत हैं उस सूची में भीष्म जी का नाम है ना। तो भीष्म जी का जो निधन है ये कोई सामान्य घटना नहीं है। तत्र ब्रह्मर्षि यहां सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्मर्षि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं, वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए। तो आगे सुखदेव गोस्वामी और अन्य पवित्र पुरुष कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए भीष्म का दर्शन करने के लिए। अन्य चामनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मनः शिष्यरूपेता आजगहुम कश्यपांगिरसादयः। और भीष्म जी को क्या कहा जाता है, वसुत्तम। भीष्म जी का एक नाम है देवव्रत है ना, और भीष्म तो दूसरा नाम है, और नाम क्या है, वसुत्तम। वसुत्तम का मतलब वसुओं में उत्तम। वसु कितने हैं, 8 8 वसु हैं, तो वसु में उत्तम, 8 वसुओं में श्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर इकट्ठे हुए महान शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत किया। भीष्म जी स्वागत कर रहे हैं, देखिए स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव देश और काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों के ज्ञाता थे, किस स्थान पर और किस समय किस व्यक्ति का कैसे स्वागत करना चाहिए जानते थे। तान समय तान महाभागान उपलब्ध वसुत्तम पूजिया मास धर्मज्ञो देश काल विभागवित। वसुत्तम 8 वसुओं में से ये कौन से वसु हैं, द्यो नाम के वसु, द्यो नाम के वसु हैं जो सबसे छोटे हैं। उस द्यो नाम के वसु को वशिष्ठ मुनि का साप प्राप्त हुआ, जिससे ज्यादा समय तक उस वसु को पृथ्वी में रहना पड़ा और अविवाहित रहा। तो भीष्म जी को वसुत्तम कहा जाता है। लेकिन जीव गोस्वामी ने कहीं पर यह भी लिखा है कि भीष्म जी जो हैं अलग हैं, और वो द्यो नाम का वसु वो भी उनके शरीर में था, तो वो द्यो नाम का जो वसु था वो तो साप भोग रहा था वशिष्ठ जी का कि वो जीवन भर अविवाहित रहेगा ना, तो उसके लिए कष्ट की बात थी। एम भीष्म जी महाभागवत उनके लिए थोड़ी कष्ट की बात थी कि वो उनका विवाह नहीं हुआ है ना। तो भीष्म जी के शरीर में 2 आत्माएं थी, तो इनको जो है जानते हैं कैसे सम्मान करना चाहिए, हमें सीखना है कि कैसे किस समय किस व्यक्ति का कैसे सम्मान करना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य लेते हैं कि पटु धर्मविद भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धर्म को संबंधित करना चाहिए, देश और काल के अनुसार धर्म को संबंधित करना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों या विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को संबंधित करके ही अपने उद्देश्य की पूर्ति की। तो भीष्म जी ने उस समय स्वागत किया सबका, लेकिन वो उठ के बैठ नहीं सकते थे, हिल भी नहीं सकते थे, है ना। तो उन्होंने कैसे स्वागत किया, मन से स्वागत किया, आंखों के इशारे से और जो है वाणी के द्वारा इतने कह सकते थे। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु और परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश को उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें संबंधित करने में पटु होना चाहिए। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने भी 16 माला का नियम बनाया, है ना, 64 माला से 16 माला का नियम बना दिया। तो देश काल के अनुसार प्रभुपाद ने उसको संबंधित किया है कि नहीं। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महापुरुषों में से एक थे, अतः वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत और सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। कोई दूसरा व्यक्ति पड़े पड़े नहीं कर सकता है सम्मान, है कि नहीं। विश्व में उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे ना सामान्य रूप से स्वस्थ थे, लेकिन उनका मस्तिष्क पूरी तरह कार्य कर रहा था और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सकते थे, इसीलिए वे सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार कर सके। मनुष्य मन से वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है, वे भली भांति जानते थे कि समुचित स्थान पर उनका किस तरह उपयोग करना चाहिए, अतः शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इससे प्रभुपाद की मुझे याद आती है कि प्रभुपाद कभी जो है जब मतलब अंतिम समय था तो डॉक्टरों का एक दल प्रभुपाद की देखभाल करने के लिए आया था या प्रभुपाद से मिलने के लिए आए थे, जो भी हो। तो प्रभुपाद की तो इतनी खराब हालत थी, भीष्म जी की तरह जैसे पूरे शरीर में बाण चुभे हैं, है ना, उनके शरीर में मांस ही नहीं था बिल्कुल, मांस और खून था ही नहीं। तो वो जो है ना बहुत कष्टदायक स्थिति होती है पूरे शरीर में, है ना, जैसे कि बाण मतलब चुभे हो पूरे शरीर में, ऐसी स्थिति थी। लेकिन ऐसी स्थिति में जैसे भीष्म जी स्वागत कर रहे हैं देवर्षि और ब्रह्मर्षि राजर्षियों का, ऐसे उन डॉक्टरों का प्रभुपाद भी स्वागत कर रहे थे और कह रहे थे कि वृंदावन आने में आप लोगों को कुछ असुविधा तो नहीं हुई। भीष्म जी भी पांडवों के कष्ट की चिंता करते हैं कि पांडवों को कितना कष्ट प्राप्त हुआ, जबकि वो इतने कष्ट में है। ऐसे उन डॉक्टरों के लिए भी प्रभुपाद चिंता कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है ठीक से कमरा मिल गया ठहरने के लिए कि नहीं मिला, कोई असुविधा तो नहीं हुई आने में है। तो इस तरह से भीष्म जी की तरह प्रभुपाद जी भी महान है। फिर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है तो भी अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं, ऐसे भगवान भीष्मदेव के समक्ष खड़े हुए थे। और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। कृष्णम तत्त प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामास मायोपात विग्रहम। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे, ये देखकर भीष्मदेव ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद के अश्रु थे क्योंकि वे प्रेम और स्नेह से आप्लावित थे। भीष्मदेव आनंद के अश्रु बहा रहे हैं। आनंद के अश्रु क्यों बहा रहे हैं, क्योंकि धर्म की विजय हुई, पांडु पुत्रों की विजय हुई, युधिष्ठिर को साम्राज्य प्राप्त हुआ, इसलिए भीष्म जी आनंद के अश्रु बहा रहे हैं। पांडुपुत्रानुपासीनां प्रस्रय प्रेम संगतां अभ्यात स्थानुरागास्त्र अंधीभूतेन चक्षुषाम। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे थे, अतः स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के गुरुजनों के विशेष रूप से भीष्म देव के लाड़ प्यार में पलते हैं। हाँ ठीक है ना, पांच पांडवों के जो पिता हैं पांडु, उनका देहांत हो गया है बचपन में ही, तो भीष्म जैसी है उनको लाड़ प्यार मिला है। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन उसकी टोली द्वारा ठगे जाने लगे। यद्यपि भीष्म देव जानते थे कि पांडव निर्दोष हैं और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे हैं, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। भीष्म जी कुछ कारणों से विवश थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के सामने वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति राजगद्दी में बैठेगा, राज सिंहासन पर बैठेगा, उसका हर प्रकार से वो संरक्षण करेंगे। इस कारण से वे जो है ना कोई नियम बदल नहीं सकते थे। आते रूपा लिखते हैं, अंतिम समय में जब भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को अपने बगल में बैठे देखा तो महायोधा पितामह अपने प्रेमाश्रु रोक न सके। उनकी आंखों से स्वतः अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उन्होंने अपने परम पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। और भी रूपा लिखते हैं कि भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे, यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। यद्यपि वो स्वयं उसके उनके विरुद्ध लड़े हैं, लेकिन प्रसन्न किस बात से हैं कि उनकी विजय हुई। भीष्म जैसा महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सका, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे। भीष्म जी की इच्छा भगवान की इच्छा में पूर्ण मिली थी, समर्पित थी है? तो भगवान दिखाना चाहते थे क्या कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता। साक्षात पाप क्या है? दुर्योधन। और साक्षात पुण्य क्या है? युधिष्ठिर। चाहे कोई कुछ भी करना चाहे, भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि भीष्म जैसे योद्धा भी विपक्ष से लड़ने पर जीत नहीं सकता। भगवान की इच्छा है क्या? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करना है ना, तो ये शिक्षा स्थापित करना चाहते हैं भगवान कि कोई कितना भी महान हो अगर पाप का साथ देता है तो हारेगा। तो क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि भीष्म जैसे योद्धा भी विपक्ष से लड़ने पर जीत नहीं सकता। और भीष्म से संबंधित और भी भीष्म जी कहते हैं कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं, सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी कृष्ण सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी कृपा करके वे मेरे समक्ष अब आए हैं जब मैं मरने वाला हूं। ये कितनी कृपा है भगवान की, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूं तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सूंतिदितः साक्षात् कृष्णो दर्शन मांगतः। इसके तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं कि भीष्म जी की मृत्यु सैया के निकट भगवान कृष्ण इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से शारीरिक संबंध था क्योंकि भगवान उनके ममेरे भाई लगते थे, और अर्जुन कृष्ण के फुफेरे भाई लगते थे। अर्जुन कृष्ण के फुफेरे भाई और कृष्ण अर्जुन के ममेरे भाई लगते थे। ये मामा के लड़के हैं उनके और वो उनके बुआ के लड़के हैं, किंतु भीष्म से उनका ऐसा कोई संबंध ना था, भीष्म से कोई संबंध नहीं था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था, फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद और स्वाभाविक होता है, इसीलिए भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान के साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध होना भी भगवान की प्रेममय सेवा की आदान प्रदान का अन्य गुण है। भीष्म देव इस दिव्य माधुर्य भाव से अवगत हैं, इसलिए भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने भीष्म जी की जो है प्रशंसा की है। और एक तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, सेनापति भीष्मदेव यहाँ पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं। और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को देख रहे थे। अतः उन्होंने अगले श्लोकों में इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहें। अब भीष्म जी क्या कहते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं कि ये भगवान अपने चतुर्भुज रूप में अभी हैं, कृष्ण भीष्म जी के सामने खड़े हैं, चतुर्भुज रूप में है, चतुर्भुज रूप और नेत्र कैसे हैं, उगते हुए सूर्य की भांति। उगता हुआ सूर्य कैसा होता है, लाल। तो कृष्ण के जो नेत्र हैं बहुत सुंदर, उगते हुए सूर्य की भांति नेत्र हैं और सुंदर रीति से सजाए हुए मुस्कुराते कमल के समान मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करो। किस क्षण तक, जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ ना दूं, आप प्रतीक्षा करो। सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजान। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्मदेव जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं, उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे। भीष्म जी के आराध्य कौन है, चतुर्भुज नारायण। लेकिन वे यही जानते थे कि चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हों। वैष्णव सदा ही आचरण में विनीत होता है, यद्यपि यह सत प्रतिशत निश्चित था कि शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ में जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान का सुंदर मुखड़ा देखना चाहा। वैकुंठ में तो हमेशा भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन तो भी विनम्र भक्त के रूप में वे भगवान का मुखड़ा देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद ये भगवान का दर्शन ना भी कर पाए। वैष्णव इस तरह की भी संभावना करता है कि मुझे नरक में भी अगर जाना पड़े तो अभी तो भगवान का नाम ले लूं, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा, है ना। अगर मुझे नरक में जाना पड़ा तो फिर भगवान का दर्शन करने का, भगवान का जो है नाम लेने का, भक्तों का संग करने का मौका नहीं मिलेगा, तो अभी लाभ उठा लूं इस अवसर का, भक्त ये भी संभावना करता है। तो भीष्म जी भी संभावना करते हैं कि उनको अगर मौका ना मिला आगे। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता, यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं, भगवान की गारंटी रहे तो भी भक्त जो है ना अपने पर विश्वास नहीं करता। यहां पर भीष्म कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर नहीं त्यागूं, इसका अर्थ है कि ये महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेगा, वह प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहे थे अपने शरीर को बनाए रख सकते थे। ये वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था, उनकी क्षति के भगवान अपने चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष रहे जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए, फिर वे कहीं भी जाएं इसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। शुद्ध भक्त कभी भी भगवत धाम जाने का इच्छुक नहीं रहता, वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहें तो वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्म देव की इतनी इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और इसी तरह मर जाए। शुद्ध भक्त की यही सर्वोच्च अभिलाषा होती है। फिर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, भीष्म देव के इस प्रकार आग्रह पूर्वक बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न सिद्धांत पूछे। युधिष्ठिर सदा कर्ण शयानम सर पंजरे अपृच्छन् विविधान धर्मान ऋषीणां चानुश्रृण्वताम्। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्मदेव ने आग्रह पूर्व स्वर में बोलते हुए महाराज युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछें, जिससे यह सूचित होता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से यहाँ तक कि व्यास देव से भी श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल सरसैया पर लेटे थे, अभी तो अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत पीड़ित थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते थे क्या कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर और मन से पूर्णतया स्वस्थ रहते हैं। अतः भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन को सही दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, ना पूछकर वे अपनी समस्याओं का समाधान किससे करें कुछ लोग आंखें बंद किए हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, और कुछ लोग आंखें खुले हैं तो भी उनके कान बंद हैं। जिनकी आंखें बंद हैं उनके तो कान बंद है ही हैं, और कुछ लोगों की आंखें खुली हैं लेकिन तो भी कान बंद हैं।